नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। असम, केरलम और पुद्दुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन 23 मार्च तक किए जा सकते हैं और इनकी जांच 24 मार्च को होगी। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 26 मार्च है और मतदान 9 अप्रैल को होगा। केरलम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले एलडीएफ ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। भाजपा ने 47 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन कंजीरापल्ली सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर निमोम सीट से मैदान में हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन को कजाकुटम क्षेत्र से और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन मंजेश्वर सीट से चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 144 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। पार्टी ने विधानसभा में विपक्ष के नेता सुविंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम और भवानीपुर से उम्मीदवार बनाया है। आसनसोल दक्षिण सीट से निवर्तमान विधायक अग्नि मित्रा पॉल फिर चुनाव लड़ेंगी। पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में मतदान होगा। मतों की गिनती 4 मई को की जाएगी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने बिहार की सभी 5 राज्यसभा सीट जीत ली हैं। भाजपा ने ओडिशा में 2, बीजू जनता दल और निर्दलीय उम्मीदवार ने 1-1 सीट जीती। हरियाणा में ताजा समाचार मिलने तक 2 सीटों पर मतगणना जारी थी। विजयी उम्मीदवारों में भाजपा के नितिन नवीन और शिवेश राम, जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा शामिल हैं। हालांकि परिणामों की औपचारिक घोषणा होना अभी बाकी है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट स्थित विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए अदालत ने 7 विदेशियों को 11 दिन की हिरासत में भेज दिया है। इन 7 विदेशियों में 3 यूक्रेन के नागरिक हैं जिन्हें दिल्ली से हिरासत में लिया गया। इसके अलावा 3 को लखनऊ और 1 अमरीकी नागरिक को कोलकाता से पकड़ा गया है। आरोप है कि ये सभी नागरिक वीजा पर भारत आए थे। पहले ये मिजोरम में दाखिल हुए जो एक संरक्षित क्षेत्र है। इसके बाद वे म्यांमार गए और जातीय युद्ध समूहों से संपर्क किया। सरकारी सूत्रों ने उस मीडिया रिपोर्ट को निराधार बताया है जिसमें दावा किया गया है कि ईरान ने भारतीय ध्वज वाले जहाजों के सुरक्षित आवागमन के बदले फरवरी में जब्त किए गए 3 टैंकरों को छोड़ने का अनुरोध किया है। सूत्रों ने बताया कि भारतीय और ईरानी अधिकारियों के बीच इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जिन जहाजों का जिक्र किया जा रहा है वे किसी भी तरह से ईरान के स्वामित्व वाले नहीं हैं। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों के बीच भारतीय पोत शिवालिक 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर मुंद्रा बंदरगाह पहुंच गया है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि एलपीजी वाहक शिवालिक द्वारा माल उतारने में कोई देरी न हो इसके लिए बंदरगाह पर दस्तावेजीकरण और प्राथमिकता के आधार पर बर्थिंग की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि एलपीजी लेकर आ रहा एक अन्य भारतीय पोत नंदा देवी कल यहां पहुंच जाएगा। श्री सिन्हा ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात यूएई से रवाना हुआ भारतीय ध्वज वाला पोत जग लाडकी सुरक्षित स्वदेश पहुंच रहा है।
इंडियन फ्लैग वेसल जग लाडकी,
भारतीय ध्वज वाहक जहाज जग लाडकी जो 14 मार्च को संयुक्त अरब अमीरात से रवाना हुआ था, लगभग 81,000 टन मुर्बान कच्चे तेल के साथ भारत की ओर सुरक्षित यात्रा कर रहा है। जहाज पर सवार सभी भारतीय नाविक पूरी तरह सुरक्षित हैं। यह कल मुद्रा बंदरगाह पर पहुंचेगा।
टुमारो एट मुंद्रा पोर्ट।
वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि देश में कच्चे तेल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है और सभी रिफाइनरी अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। साहित्य अकादमी ने आज 24 भारतीय भाषाओं के लिए वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की घोषणा की है। प्रसिद्ध लेखिका ममता कालिया को उनके हिंदी संस्करण जीते जी इलाहाबाद के लिए और प्रसिद्ध राजनयिक नवतेज सरना को उनके अंग्रेजी उपन्यास के लिए साहित्य पुरस्कार दिया गया है।